हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः काल के भागवत के प्रवचन में। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का पहला अध्याय चल रहा है। विदुर जी के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उद्धव जी को, और ये बातचीत हो रही है जमुना जी के तट कर ऊपर इसी वृंदावन धाम में, जो भगवान के महान भक्तों का वृंदावन में जमुना के किनारे पे मिलन हुआ है। और दोनों की चर्चा का विषय भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी तदीय वस्तु है उनके विषय में हो रहा है। आज के श्लोक में विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य परिवार के विषय में कुछ पूछ रहे हैं। इस श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, सप्ताह पहले तीसरे स्कंद के ऊपर हमने सारांश में बात की थी, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक विदुर बोल रहा है और संबोधन कर रहा है उद्धव जी को, और ये बातचीत उस वक्त हो रही है। समय क्या है? समय महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका है, इसकी जानकारी तो विदुर जी को है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम चले गए हैं। ये लीला जानकारी होते हुए भी विदुर ऐसी अवस्था में है कि उद्धव जी से के उसके विषय में कुछ पूछे जा रहा है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अपि स्वदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वतां काम दुभो अनुरुद्ध। यमनन्ति समहि शब्दयोनिम् मनोमयं सत्त्वतुर्यतत्वम्। तो आइए इस श्लोक को देखिए, कितना समझ में आ रहा है इस श्लोक में। शब्दों को देखिए, कुछ शब्द इसमें हैं जिससे आपको क्लू मिल सकता है कि क्या कहा गया है पूछ रहे। एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भगवान शब्द में तो कोई आपत्ति नहीं है, समझ में आ सकता है। हाँ, सुखम का भी अर्थ आ सकता है, सुख देने वाला, ठीक है। और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध शब्द समझ में आ रहा है, अनिरुद्ध, ठीक है। काम दुख यहां लिखा है, भगवद गीता में शब्द है कि काम दुख, ये यज्ञ काम धेनु है, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। काम मतलब इच्छा, दुख मतलब पूरी करने वाला। और सात्वताम एक शब्द है, सात्वताम ये शब्द कई बार भागवत में आता है। सात्वताम भक्तों के लिए कहते हैं, भक्त जो भगवान के होते हैं उनको सात्वताम कहते हैं। भगवान का नाम है सात्वताम पति, भक्तों का संग, ठीक है, भक्त। अच्छा, फिर एक शब्द पड़ा है, क्या है यह? यम आमनानी, आमनानी मानते हैं, ऐसे समझ लो, माननी है, मानते हैं, आमनानी मानते हैं, जिसको यम, जिसको मानते हैं, आमनानी मानते हैं जिसको, समा कई समय से, पुराने समय से, असल से समा क्या मानते हैं? शब्द योनिम, शब्द योनिम का अर्थ क्या है? शब्द कहते हैं ब्रह्म को, वेद को, वेद शब्द है। योनि मतलब जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है, शब्द की जहां से उत्पत्ति हुई है। और फिर शब्द है मनोमयम, मन, और फिर क्या है, मनोमयम मनोमयम सत्व तुर्य तत्वम। तुर्य तुर्य को वैसे तो चौथा जागृत स्वपन सुषुप्ति तुर्य, तुर्य का मतलब चौथा स्टेज। तो चौथा तुर्य का अर्थ यहां लो चार, चौथा तत्व है कौन सा वाला सत्व, सत्व का चौथा तत्व है। ये चार पांच बातें ऐसे श्लोकों को देखने से, अभी विद्रु क्या पूछ रहे हैं, अनिरुद्धा भगवान अनिरुद्ध अथवा भगवान के पोते अनिरुद्ध, लेकिन यहां प्रभुपाद भावार्थ में भगवान अनिरुद्ध ही कहते हैं। भगवान अनिरुद्ध उसका क्या विशेषता है, बोला भक्तों की सब इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। अनिरुद्ध जो सब भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले हैं, पहली विशेषता ये। दूसरी विशेषता क्या, जिनसे ऋग्वेद, जिनसे ब्रह्म योनि शब्द योनि, जिससे वेद की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, दूसरी बात। तीसरी बात मन मनोमय, तो मन का जो अधिपति है वो कौन है, वो चौथा चौथे नंबर का भगवान का सत्व तत्व है। तो ये शब्द ऐसे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। इससे पहले कल किसके विषय में पूछा है, कल जिसके ऊपर चर्चा आपकी हुई उसके ऊपर विशेष रूप से देवकी माता के विषय से मैं पूछा गया है। माता देवकी ठीक तो है ना, तो विशेषण क्या दिया था देवकी का, जो वेदों का सार बताने वाला जिसके उदर में से प्रकट हुआ और उससे पहले कश्यप और आदित्य से जैसे पहले भगवान प्रकट हुए थे, वो माता देवकी कैसे है। अब देवकी के बाद पूछ रहे हैं भगवान के अनिरुद्ध के विषय में। अनिरुद्ध तो अनिरुद्ध है क्या, चतुर जब देखेंगे तो चार चतुर्व्यूह भगवान से पहले विस्तार क्या होता है, बलराम जी और फिर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध कितना नंबर हुआ, चार। तो ये हो गया तुर्य, तुर्य का मतलब चौथे नंबर का, एक बात ठीक है। तो यहां इसका अर्थ क्या होगा, आपको कुछ इसका अर्थ कैसे लग रहा है, वो इसका अर्थ ठीक लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है अर्थ इसका, देखिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध को विद अपि स्वतः, क्या मैं पूछता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है, वो शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये हो गया दूसरी लाइन का अर्थ, हाँ, सात्वताम काम दुग अनिरुद्ध, अपने शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं की, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, पहली बार। और प्राचीन काल से, वो समय ना, समय बहुत समय से, प्राचीन काल से समा, प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, शब्द योनि ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा मनोमय, तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता है। तो कितनी चार बातें अनिरुद्ध के विषय में यहां कही गई हैं। अनिरुद्ध के अनिरुद्ध है कौन पहले ये तो पूछो, ये तो कि अनिरुद्ध के बारे में ये सब कहा गया, लेकिन अनिरुद्ध कौन है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला में भगवान के आठ विशेष पटरानियां और फिर 16,100 कहां से आई थी, ये भोमासुर के राजकुमारियां जो उसने वहां रखी थी बंदी बनाकर उनको भगवान ने मुक्त किया। संसार ने कहा ये तो रही है असुर के पास, इसको कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने बोला कोई नहीं स्वीकार करे तो हम है ना। अब संसार में सबको स्वीकार करते हैं, आपको क्यों नहीं करेंगे। सबको भगवान ने स्वीकार कर लिया और एक एक में से 10 बच्चे हुए। और 100 साल भगवान द्वारका में अगर रहे तो 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हुए। तो बच्चे के जन्म के ऊपर सूतक होता है, एक बार सूतक हुआ 5 दिन 7 दिन सूतक जब तक नाम नहीं हो। ये तो रोज 2 बच्चे हो रहे, भगवान ने सूतक बोला यहां से जाओ भाई, बाकी घर का काम ही नहीं होगा सूतक रहे, पूजा पाठ कहां से करेंगे, यहां कहां सूतक अब रहेगा। भगवान ने सूतक को कहा बाबा यहां सूतक रहेगा तो ना कोई घर में यज्ञ होगा, ना दान होगा, ना पूजा होगी, कहां सूतक रहने की जगह नहीं रही। तो रुक्मणी से प्रद्युम्न मुख्य है। 2 के नाम सुखदेव जी लेते हैं, अन्य कहते हैं 10 में से 2 के नाम लेके अन्य बोलते हैं। तो प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे हैं वज्रनाभ, जिसने ये ब्रजमंडल बसाया। जो ब्रजमंडल जो अभी हमको दिख रहा है, ये गोविंद देव जी जो इस वक्त जयपुर में है, ये हरदेव जी, गोविंद देव जी, केशव देव जी, ये सारे ठाकुर जी जो भगवान के सुंदर श्री विग्रह वो वज्रनाभ ने स्थापित कराए थे परीक्षित महाराज के। परीक्षित महाराज जब हस्तिनापुर के सम्राट थे तब मथुरा मंडल का राज वज्रनाभ को दिया गया था, लेकिन तब ये उजड़ा, जरासंत के द्वारा उजड़ा हुआ मथुरा था मंडल। वज्रनाभ बड़े चिंतित थे और जब यहां आए महाराज परीक्षित तो कहा आप कोष और सेना की चिंता नहीं कीजिए, सुरक्षा और देखभाल हमारा कर्तव्य है, आप हमारे पूर्वजों के पूजनीय हैं, बस आप यहां जनता का प्रेम से, बोले जनता है ही नहीं, करूं किसका, जनता का क्या देखभाल करूं। तो सांडल्य ऋषि को निमंत्रण दिया गया, वो प्रकट हुए, बोला मैं इसलिए यहां रुका हुआ था कि आप आएंगे, अब ऐसे कीजिए कि आप यहां निर्माण कीजिए मंदिरों का, और बहुत लोग काम करने आएंगे, मंदिर बसेंगे बनेंगे तो यहां प्रजा आ जाएगी। बोला कि तो भगवान कैसे थे, कैसे मूर्ति बना है, ठाकुर जी का प्रतिमा बने तो कैसे बने, क्या पता लगे। तब विशेष रूप से सांडल्य मुनि ने कहा कि आप जमुना जी के तट पे स्थान बताया ऐसे कि यहां बैठ के कीर्तन संकीर्तन करेंगे तो उद्धव जी भी यहां प्रकट होंगे, भगवान के सारे परिकर प्रकट होंगे और आपको बताएंगे कि भगवान कैसे थे। और उस वक्त परीक्षित की माता, क्या नाम परीक्षित की माता का, उत्तरा, उत्तरा अभी तक इस धरातल पे थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, तो उनके निर्देश के अंदर भगवान के ये सुंदर विग्रह बने हैं। जिन्होंने भगवान को देखा था उन्हीं के निर्देश में, उन्हीं के देखभाल में, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वो विग्रह बने हैं, ऐसे कल्पित विग्रह नहीं है। तो अनिरुद्ध के बेटे का नाम क्या था, वज्रनाभ। तो ये अनिरुद्ध, एक बहुत विशेषता अनिरुद्ध की, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के जो द्वारका भाग है उसमें 161-162-163 इन श्लोकों में अनिरुद्ध का कुछ वर्णन है। किसी को ध्यान में है, कभी पढ़ा है, पढ़ा तो जरूर होगा, ध्यान में है किसी को, तो अनिरुद्ध की कथा थोड़ी कर ले ताकि अनिरुद्ध जो पूछ अनिरुद्ध के बारे में रहे हैं वो विदुर पूछ रहे, विदुर तो सब कुछ जानते थे, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हम भी कुछ जान लें, ये हमारे ही स्मृति को ताजा करने के लिए पूछ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझना चाहिए, विदुर को तो पूछना था लेकिन उसके पूछने के माध्यम से हमको उसकी जानकारी हो जाए। तो अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न के बेटे हैं और प्रद्युम्न स्वयं कामदेव था। तो ये भी बहुत सुंदर देखने में था, थोड़ा सा सांवला था रंग में, बहुत सुंदर था। और पहली अनिरुद्ध की एक शादी तो रुक्मी की बेटी के साथ हुई थी, और इस शादी के अंदर बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण आदि सब गए थे, कहाँ, दमघोष महाराज की राजधानी में। और शादी जब हो रही थी तो कालिंगा नरेश भी वहां आया हुआ था। उन्होंने कहा ये बलराम जी को हम वैसे तो हरा नहीं सकते, ये बहुत बलवान है, अब चलो इनको कीड़ा में हराते हैं। वहां विवाह हो रही है, बोला चौपड़ खेलते हैं। चौपड़ खेले, बलराम जीत के, बोला तुम हार गए हो। तू बलराम ने बोला नहीं मैं जीता हूं, आकाशवाणी भी नहीं बलराम ने जीता है। फिर भी वो हंसने लगे, अरे ग्वाला तुम्हें क्या पता राजाओं का खेल कैसे करते हैं, गाय जाके चराओ ना। बलराम जी ने चौपड़ को इधर किया और कुछ जो वहां हल मूसल कुछ भी जो पड़ा था उठाया और वो रुक्मी का सर के ऊपर मारा और रुक्मी का राम नाम सत्य हो गया। इसी रुक्मी को भगवान श्री कृष्ण बांध के मार रहे थे, तब पता है बलराम जी ने क्या कहा, साले को भैया थोड़ी मारते हैं, का साला है इसको मत मारो, और आज स्वयं मार दिया। ओ कालिंग नरेश भाग रहा था, कालिंग नरेश, कालिंगा कहां है, उड़ीसा में, भाग रहा था। बलराम जी ने मुक्का मारा होगा, दो चार पांच दांत नीचे गिर गए। तो जैसे लिखा है वहां, जैसे दक्ष के यज्ञ में आके वीरभद्र ने सब कुछ काम, बलराम जी ने उस शादी में सब ऐसा काम कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने वहां चुप लगा दी। बोला अब बलराम का पक्ष लूंगा तो रुक्मणी नाराज होगी, और फिर दो बहुएं घर में है वो भी इनकी बेटियां हैं, तो घर में झगड़ा हो जाएगा, और अगर रुक्मणी का तरफ लूंगा तो भाई नाराज हो जाएगा। चुप भगवान, बिल्कुल बोलना बंद। तो ये भी एक कभी ऐसी अवस्था आए कि दोनों में से, तब चुप करना भी कभी काम आ जाता है। भगवान चुप हो गए, ठीक है जो करो। तो ये सबको मारा मारी हो गई, फिर लड़की लेके और विदा होके वापस द्वारका आ गए। ये हुई अनिरुद्ध की पहली शादी। दूसरी उनकी शादी की विशेषता ये है, भगवान वामन देव के भक्त कौन है सबसे बड़े, बलि महाराज। तो बलि महाराज ने तो वामन देव को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, लेकिन बलि के 100 बेटों में एक बेटे का नाम था बाणासुर, बाण। और बाण ने कहा ये वामन की तो सेवा करना ठीक नहीं, ये सब कुछ ले लेता है, हम तो आशुतोष भगवान शंकर के भक्त बनेंगे। ऐसा शंकर को प्रश्न किया, शंकर जी बोला मांगो क्या चाहिए। बोला मेरे पिताजी की वामन जी करते हैं ना चौकीदारी, आप मेरे देश की चौकीदारी करो। शंकर जी ने कहा अरे उनने अपनी इच्छा से किए, कभी जिसकी आराधना करो जिसकी पूजा करो उसको थोड़ी ऐसे कभी कहा जाता है कि चौकीदारी करो। तेरा मुंह है, मुंह रखे है, ये तो कोई अकुल की बात कर रहा है क्या। पूजा की, प्रतिष्ठा की, बोलता है कि हमारे नगर की चौकीदारी करना, नगर का नाम भी कुछ लिखा हुआ है, कौन सा पुर है, शिपतपुर ऐसे कुछ नाम है, क्या याद है किसी को, हाँ शिवपुरी नहीं है तो ऐसा ही है, सिद्धपुर ऐसे कुछ है, याद अभी आएगा तो बता दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा अब क्या करें, तुम मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, तुम कहते हो तो चलो तुम्हारे हम नगर की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे मांगना नहीं चाहिए। बाणासुर थोड़ी देर के बाद दोबारा गए शंकर जी के पास, बोला बाजू में खुजली हो रही है, 1000 बाजू है, लड़ाई कैसे करूं, कोई मुझसे लड़ता नहीं, आप लड़ोगे। भगवान ने कहा अच्छा जी, ये अच्छा शिष्य गले पड़ा है, क्या आप लड़ोगे मुझसे। ऐसे बहुत क्रोध आया रुद्र जी को, जाओ जाओ बोलो ये धजा गड़ा दो तुम्हारे नगर में, जब ये गिरे तब समझ ले तेरे से लड़ने वाला कोई पैदा हो गया है। ये कथा पूरी हुई, उनकी बेटी बाणासुर की एक बेटी, उसका नाम है उषा। एक होती है उषा छोटे ऊ वाली, उसको बोलते हैं प्रभात को, सूरज उगने से पहले वो होती है उषा, वो छोटा ऊ वाली उषा है। वो उषा जब निकलती है घर से तो सूरज से पहले अपनी गाड़ी के अंदर सब सुख संपत्ति धन धान्य जो चाहिए भक्ति सब लेके निकलती है, जो जागता है जो चाहे वो ले ले, सोता है उसकी तरफ दोनों हाथ ऐसे करके चली जाती है, मरे रहो पड़े रहो। तो वो सब सुख की संपत्ति लेके निकलती है, उसका नाम उषा है। और ये है उषा, इसमें ऊ जरा दीर्घ है, हा? हाँ ऊंट वाला ऊ है। तो ये उषा जी को स्वप्न के अंदर अनिरुद्ध का दर्शन हुआ, सवास हुआ, ऐसे सुबह उठ के बड़ी चिंतित हुई कि मुझे तो अभी वही चाहिए जो मैंने स्वप्न में देखा है। तो उसकी एक थी सेविका, योगिनी थी, बड़ी योग का अभ्यास था और चित्रलेखा, चित्रकला में बड़ी प्रवीण थी। उसने चित्र निकालने शुरू किए, वो जो निकाले ये नहीं है फेंको, ये नहीं है फेंको, श्री कृष्ण का चित्र निकाला। बोला लगता तो ऐसा ही था लेकिन है नहीं, ये प्रद्युम्न का चित्र निकाला। बोला ऐसा ही है लेकिन ये नहीं। तब अनिरुद्ध का वो बोला यही है, यही मैंने देखा है, यही मुझे चाहिए। अब ये महायोगिनी वैष्णवी का कपड़े पहने और चली गई द्वारका में। ये असुर लोग जो होते हैं ना, कपड़े हमेशा साधु के पहनते हैं जब कोई खराब काम करना होता है। तो रावण ब्राह्मण के कपड़े पहन के आ गया, साधु बन के आ गया। आपका आजकल तो चोर डाकू रहते ही साधु के कपड़े में प्राय, ये सब झूठ नहीं बोल रहा हूं। हरिद्वार के अंदर आश्रमों के अंदर देखो, जो 10-12 खून किए वो सब लाल कपड़ों में है। बड़ी सुरक्षा है, बहुत बड़ी सुरक्षा है। दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा दी, कोई शकिल पहचान नहीं रहा है। एक तो चोर था, भागता हुआ जा रहा था, पुलिस पीछे आ रही थी। वो महाराज की धोती सुखाई हुई थी, फटाफट पहन के ऐसे बैठका माला उठा के ऐसे कर, तो बोलने आ नहीं रहा था कुछ भी। अब पकड़ेगा तो छोड़ाएगा, पकड़ेगा तो छोड़ाएगा, पकड़ेगा तो छोड़ाएगा। पुलिस आया, पूछा महाराज, महाराज दंडवत चोर देखा या? नहीं 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 नहीं। पुलिस चली गई, इसने देखा, अरे केवल महाराज की धोती चुराने का इतना फायदा है तो महाराज ही बन जाए इससे अच्छा है। भाई इतने एक केवल महाराज की धोती चुरा के पहनने का इतना लाभ हो गया तो महाराज बन जाए इससे तो बहुत अच्छा है। तो फिर तो वो साधु ही बन गया। तो प्रायः ऐसे लोग इन वस्त्रों का बहुत बड़ा, लेकिन कुछ जो जो सच्चे साधु होते हैं ना वो बड़ा सम्मान करते हैं वस्त्र का। एक साधु को कोर्ट में जाना था, गेरू कपड़े पहने वाला था, वृक्त महात्मा था। कोर्ट में जाने के समय वो कपड़े उतार के साधारण कपड़े पहने, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला इन कपड़ों का अपमान हो जाएगा, कोर्ट में पहन के जाऊं ये कपड़े लोग देखेंगे अच्छा लगेगा कि साधु कोर्ट में खड़ा है, अच्छा थोड़ी लगता है। ये एक महात्मा की एक गाथा आती है कि इनका बहुत बड़ा सम्मान। तो हम जब ये वैष्णव तिलक धारण करके कंठी पहन के जब ये वस्त्र पहनते हैं तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि की हम भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारा जीवन बहुत ही शाश्वत होना चाहिए, बहुत ही प्रमाणित होना चाहिए, बहुत ही आचरणवान वाला होना चाहिए। इसके नहीं तो प्रायः ये समझ लीजिए कि इस्कान संस्था के अंतर्गत जो भक्त है वो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोगों ने प्रभुपाद जी को नहीं देखा है, लोग आपके माध्यम से प्रभुपाद को जानेंगे। इसलिए आपका चरित्र इन वस्त्रों के सम्मान रखने के लिए बहुत विशेष महान और वैष्णव आचार से युक्त होना चाहिए। लेकिन ये योगिनी वैष्णवी बन के द्वारका में प्रवेश किया। रात को सोए हुए अनिरुद्ध को चारपाई के साथ वो योग शक्ति से उठा के ले आई बाणासुर की नगरी में और सीधा उषा के कमरे में जाके उसको रख दिया। किसी को पता नहीं लगा, लेकिन चौकीदारों ने एक दिन बता दिया कि महाराज आपकी बच्ची लगता है कुछ दुष्चरित्र हो गई है, दुष्चरित्र हो गई है, ऐसे दिख रहा है। बाणासुर ने चारों ओर से बंद किया कमरे के अंदर, अनिरुद्ध सिपाहियों को भेजा। अनिरुद्ध का अर्थ है जो किसी के रोकने से रुके नहीं, जिसमें अवरुद्ध कोई डाल नहीं सके उसको बोलते अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध को कैसे पकड़ सके, तो सबको मार दिया, जो भी सैनिक आए सबको मार दिया। तो बाणासुर ने नागफास में उसको बंद कर दिया, रुद्ध कर दिया, बांध दिया। उषा ने तो अनिरुद्ध को रुद्ध करके कमरे में ही बंद कर दिया। नारद जी घूमते घूमते गए द्वारका, पूछा जाके आपके पास रजिस्टर है कि आपके बच्चे कितने हैं? आपने रजिस्टर मेंटेन किया है? आपको मालूम नहीं है कोई आपके घर में कम है? एक बार मैं सुन रहा था, मुझे आश्चर्य लगा, जब सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सम्मान करके उसको आलिंगन करके आसन पे बिठा के चरण धोए, तो भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण घर में आयो, आशीर्वाद दे दीजिए मेरी पत्नियों, क्यों आपकी बाधी आ रही? तो रुक्मणी जी आई, बोला आशीर्वाद, तो कहे पुत्रवती भव, सौभाग्य सौभाग्यवती भव, बड़ा मंत्र पढ़ ली। सत्यभामा आई, आठ आई, तब तक महाराज का हाथ थोड़ा ढीला पड़ा। तो फिर बोलना बंद कर दिया। अब 80 के करीब हुई तर महाराज बोले बाकी कितनी है, कृष्ण पूछे बाकी कितनी और है, बोला अभी तो महाराज 16,000 और है। बोला मैं पूरा ही घिस जाऊंगा, आशीर्वाद कब हा? अब तो बोलना बंद किया, अब हाथ भी नहीं है तुम। भगवान ने देख के कहा देखो मित्र तुम मेरे को आशीर्वाद दो मैं संतुष्ट, सब संतुष्ट। बोला ये ठीक है। मैं संतुष्ट सब संतुष्ट, ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो ब्राया ये होता है ना, ब्राह्मण किसी घर में आप जाओगे साधु तो घर वाले सबको लाएंगे महाराज को दंडवत करो आशीर्वाद दो। अभी ऐसा ही घर किसी में सैकड़ों भाते हैं वो ना सदस्य, तो आशीर्वाद महाराज का तो हो गया। तो नारद जी ने कहा आप जरा गिनती की। अरे अनिरुद्ध नहीं है, बोले नहीं है तो मैं बताता हूं कहां है, जाओ वो बाणासुर के वहां है, वहां बाणासुर ने कैद कर दिया अनिरुद्ध को। यहां से तो भगवान श्री कृष्ण अपनी 12 अक्षौणी सेना लेकर बाणासुर के नगर को चारों ओर से घेर लिया। वो घेर लिया तो आए सब सैनिकों को मार दिया, बाणासुर की बाजू काटने लगे। और बाणासुर की बाजू काटने लगे, बाणासुर तो मारने ही वाले तो बीच में आगे खड़ा हो गया ही। कोई माता जी कौन है, एक नाम है कोटला, कोटला नंगी होकर खड़ी हो गई। भगवान ने आंखें बंद कर दी, बाणासुर भाग गया। ये भी बड़ी युक्ति है असुरों के युद्ध की, शिष्टाचार वाले आदमी को नंगी आके कोटला खड़ी हो गई तो आंखें बंद कर दी। भगवान ने ऐसे कर दिया, बाणासुर भाग गया, बच गया। भगवान शंकर को कहा आप जाओ आप जरा कुछ करो, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, आपकी मैं भक्ति की है। तो भगवान फिर यहां विशेष रूप से एक युद्ध होता है, भगवान 3 सर वाला और 3 पांव वाला असुर भगवान शंकर ने भेजा, त्रिसरा, और उसको कहते हैं क्या, कौन सा ज्वर, शिव ज्वर। और भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर को यहां से भेजा। तो ये ज्वर ही आपस में बुखारी लड़ते हैं, आपस में भगवान नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे का बुखार जो था वो आपस में लड़ रहे थे। तो फिर शिव ज्वर त्रिशंका ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए, तब भगवान शंकर प्रकट हुए। और विशेष ऐसी लीलाओं में भगवान इंद्र को, ब्रह्मा को, फिर भगवान शंकर को भी के द्वारा भागवत में दिखाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है। भगवान शंकर ने बहुत प्रार्थना की और कहा कि देखो ये मेरा शिष्य है, अब इसको आप मारना नहीं। भगवान ने कहा देखो इसको मारूंगा तो वैसे भी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपकी बात का तो सम्मान रखना है, लेकिन मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके कुल में किसी को नहीं मारूंगा, ये तो प्रहलाद का पोता है, बस इसको थोड़ा अहंकार हो गया था, बाकी सब बाजू काट दिए, केवल 4 छोड़ देता हूं, इस 4 बाजुओं के साथ ये रह सकता है। और तब फिर उषा को विवाह करके अनिरुद्धा के साथ द्वारका लाए। ये अनिरुद्ध की कथा भागवत से, तो अब अनिरुद्ध का जानकारी हो गई ना। तो इस अनिरुद्ध के विषय में मतलब कोई विशेषता थी इसलिए विषय में पूछा था कि बाणासुर जैसे बहुत बड़े असुर, बाली के पुत्र, प्रहलाद के पुत्र, उसके कुल का था जिसके पास भगवान स्वयं गए थे लड़ने के लिए, उसकी बेटी के साथ विवाह हुआ था, उस अनिरुद्ध का क्या समाचार है, क्या विशेषता अनिरुद्ध की है कि अपने भक्तों को की सब इच्छाएं, शुद्ध भक्तों की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। बाकी 2 चीजों के लिए अब प्रभुपाद जी के भावार्थ को पढ़ते हैं, 2 बातों और को, कि 2 बातों और में क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं आदि चतुर्भुज बलदेव के आदि अंश 4 है। ये द्वारका में 4 अंश हैं, ये द्वारका, इस द्वारका की बात तो है लेकिन ये द्वारका उसकी बात है जो आध्यात्मिक जगत में है। ये चैतन्य चरितमृत के पहले आदि लीला में ही विशेष रूप से ये वर्णन आता है, 4 शब्द इसमें से, इसलिए ताकि आपको कभी इसमें पढ़ने का शौक हो जाए तो उसमें यहां लिखा है वासुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्वचतुर्व्यूह अंशी तूर्य विशुद्ध। ये विशुद्ध 4 भगवान के अंश हैं बलराम जी के बाद, बलराम जी से ये चार निकलते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये कहां है? ये द्वारका में। और वो द्वारका कहां है? वैकुंठ से ऊपर मथुरा, द्वारका और गौलोक। तो गौलोक से नीचे जो द्वारका है उसमें चार है। फिर इन चार में से वैकुंठ के अंदर दूसरा चतुर्व्यूह, उसको बोलते हैं दूसरा चतुर्व्यूह, सेकंड क्वाड्रिपल, दूसरा चतुर्व्यूह वैकुंठ में होता है। वैकुंठ में फिर जो महाविष्णु है, नारायण है, वसुदेव, वहां से चार, फिर वसुदेव, संकर्षण। तो ये दूसरा जो चतुर्व्यूह है, इस दूसरे चतुर्व्यूह में, इस दूसरे का वर्णन फिर यहां आगे है। और इसका दूसरा चतुर्व्यूह, तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो जो चतुर्व्यूह है ना, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध है, ये सभी विष्णु तत्व हैं। प्रभुपाद जी पहले ये बात करते हैं, विष्णु तत्व ये इसलिए लिखते हैं कि चेतना चरित में बहुत लंबा भावार्थ लिखा हुआ है शंकराचार्य के एक मत का खंडन करने के लिए। शंकराचार्य का एक मत है कि वसुदेव को छोड़ के संकृष्ण जीव है, प्रद्युम्न मन है और अनिरुद्ध अहंकार है। ये शंकराचार्य के भाष्य में है, कुछ श्लोकों का नाम दिया है। लेकिन फिर उसके उत्तर में हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रों से निकाला है वो उसमें बहुत लंबा दिया हुआ है, उनके आधार पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये चारों भगवान विष्णु के विष्णु तत्व हैं, ये जीव तत्व नहीं है। वो जीव क्यों है ये बाद में बात करते हैं, लेकिन ये सब क्या है? विष्णु तत्व है। पहली बात प्रभुपाद कहते हैं। फिर कहते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए, श्री राम के अवतार में ये चारों तत्व आए थे, वासुदेव स्वयं भगवान श्री राम, और लक्ष्मण जी है संकृष्ण, और बाकी दो भाई हो गए प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इसके ऊपर भी कथाकार वही भाषा बोलते हैं, कभी जीव बोल देते हैं दूसरों को, ये ठीक नहीं है। इस बात को प्रभुपाद जी यहां कहते हैं ये चारों विष्णु तत्व हैं। भगवान राम आदि वासुदेव और संकृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी है, जिनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ है। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण है, जिसके श्वास से ऋग्वेद निकला है। और यह उस बात का है, शब्द योनि, शब्द योनि का यहां अर्थ लिखा है। और फिर आगे लिखते हैं मार्कंड्य पुराण में इनकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान कृष्ण आदि व्यूह के वसुदेव अंश हैं। अब ये बहुत बड़ी दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि व्यूह वासुदेव के अंश हैं। फिर सुनिए, आदि भगवान श्री कृष्ण गौलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, स्वांश एक ही विष्णु तत्व हैं और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। यहां भावार्थ पूरा होता है। अब एक तीसरी लाइन है कि मनोमय, ये मन का भी अधिपति है। इसके ऊपर थोड़ा सा दो मत है, लेकिन एक जो मत लिखा है वो बता देते हैं। यहां सुंदर सा लिखा है, अनुरुद्ध जो चौथा विस्तार है उसको संत उसकी पूजा करते हैं और बड़े मनोवैज्ञानिक उसकी पूजा करते हैं मन के रूप में, ऐसा भावार्थ है। और वो नीले रंग का है, उनका स्वरूप बहुत घन बादल जैसा है। और धर्म, वो परमात्मा के रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। मनु जो देवता, ये सब इनकी रक्षा करते हैं। और वैदिक ये विशेष रूप से एक टुकड़े में लिखा है मन का। प्रायः प्रद्युम्न को मन का कहते हैं और अनिरुद्ध को अहंकार का कहते हैं, लेकिन यहां मार्कंडेय पुराण से ये एक टुकड़ा निकाला है कि मन के अधिपति अनिरुद्ध है, इसका ध्यान करते हैं लोग। तो वो एक होता है समेष्टि और वेष्टि ऐसे करते हैं ना, तो सब जो मन समेष्टि है उसका प्रतिनिधि अनिरुद्ध है। और जो सब जीव कहां जाते हैं प्रलय के समय, वो संकर्षण में समा जाते हैं अपना, इसलिए उसको कहते हैं जीव। सब जीवों का रहने का स्थान वो है, इसलिए उसको जीव संज्ञा कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सारे जीव उसी में प्रविष्ट होते हैं, इसलिए जीव कह सकते हैं। लेकिन वो स्वयं जीव नहीं है, सारे जीवों का अधिष्ठान है। तो ये और दूसरी बात, जो भगवान द्वारका में जो श्री कृष्ण भगवान अथवा मथुरा में जो श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने असुरों का वध किया, वो वसुदेव कृष्ण है। लेकिन वृंदावन में रहने वाले कृष्ण है यशोदानंदन कृष्ण। तो ये यशोदानंदन कृष्ण वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते हैं। तो अक्रूर जी जब ले जा रहे थे तो अक्रूर घाट पे जमुना में स्नान करते समय अक्रूर जी ने दर्शन किया चार हाथ वाले भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का। रथ के ऊपर देखते तो वो बैठे हैं और जल में देखते तो वो बैठे हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं उस अक्रूर घाट से आगे कृष्ण बाहर गए नहीं, वहां से आगे वसुदेव कृष्ण चले गए और यशोदानंदन कृष्ण ब्रज से बाहर कभी जाते नहीं है, तो वहां सदा रहते हैं। उस वसुदेव कृष्ण की हम रोज आजकल रात को दीप दर्शन करते हैं। कौन से कृष्ण को? गोकुले ब्राजमानम, जो गोकुल में ब्राजमान है उसकी हम रोज प्रार्थना करते थे। मेरे मन का भाव था आज दामोदर अष्टक के ऊपर चर्चा करते, आठ श्लोकों के ऊपर उसके भाव को, सनातन गोस्वामी के शब्दों में उसकी भावार्थ को, लेकिन अनिरुद्ध की बात आ गई आज, तो अनिरुद्ध की कथा हो गई। आज नर्मदा महाराज का दूसरा साल तिरुभाव तिथि का है, तो नर्मदा महाराज को तो सब लोगों ने देखा है, जानते थे, बीबीटी बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ी सेवा की। प्रभुपाद जी को पुस्तक वितरण बहुत सबसे प्रिय थे और पुस्तकों के जो है वो छपाई को देखना, उनको देखभाल करने में उनके जीवन के बहुमूल्य समय उन्होंने वहां दिया। वो महाराज अंत में ब्रज में आके साल डेढ़ साल से अधिक यहाँ रहे और भक्तों के द्वारा उसकी वैष्णोदास आदि भक्त उनकी बहुत देखभाल सेवा करते थे। और दो साल पहले प्रभुपाद के तिरुभाव के दूसरे दिन नर्मदा महाराज वापस भगवान की लीला में प्रविष्ट हुए, तो उनका आज दिन है। विशेष रूप से भक्ति विकास महाराज ने एक भारत के ग्राम गांव के अंदर अभी तक सुरक्षित है वैदिक साहित्य, उसके अंदर एक साक्षात्कार नर्मदा महाराज से लिया था, जिसमें नर्मदा महाराज अपने गांव में जहां उनका जन्म हुआ था छोटा गांव, अपना वर्णन कर रहे हैं कि हम उस वक्त में कितना वातावरण शुद्ध हुआ करता था, कैसे हम वहां रहते थे, तो इसके अंदर उसका उल्लेख है। तो कोई उनके जीवन में पहले तो सत्य, बहुत सत्य उन्होंने बोला है, साधु जैसे बोलता है ऐसे, वो इसमें पढ़ने जैसा है, बड़ा सुंदर है। लेकिन समय अभी शाम 11 बजे वहां चलेंगे, वहां भी सब लोग इस विषय में बोलेंगे। तो नर्मदा महाराज की स्मृति करने से प्रभुपाद के पुस्तक वितरण के प्रति हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए और ये भाव लेना चाहिए कि जीवन में कोई एक विशेष कार्य व्यक्ति करता है, एक ही कार्य को लग जाए तो व्यक्ति पीछे स्मरणीय, उसकी जीवन स्मरणीय हो जाता है। 10-12-20 काम साथ करने वाले को सब भूल जाते हैं, लेकिन एक ही काम जीवन भर उसी को दे देना, वो बहुत बड़ा उनका एक विशेष कार्य। जैसे थोड़े दिन पहले, अभी तो एक साल पूरा नहीं हुआ, साल होगा, तो विभू चैतन्य प्रभु जिस दिन आए इस मंदिर के अंदर, उस दिन रसोई राधा कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर नेताय की रसोई घर में गए थे, उनका राजभोग बनाते थे। सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ के किचन में जाते थे, रात को 10 बजे बाहर आते थे, यही एक काम किया और इस चार दीवारी से कभी बाहर गए नहीं। उनका सब कुछ यही है मेरे लिए। जैसे ब्रजवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा चारू धाम सब शास्त्र सब तीर्थ यही है, कहीं जाना नहीं है, उन्होंने उसको भी सीमित करके प्रभुपाद ने कहा ये चार दीवारी में आपके लिए सब कुछ है, वो इस चार दीवार से कभी बाहर नहीं गए, इसी में अपना जीवन के 25-30 साल इसी में, 30 साल से क्या, 30 साल से तो अधिक यहीं अपना जीवन व्यतीत किया हुआ। तो ऐसे कुछ विशेष भक्त होते हैं जो जीवन में एक ही सेवा को ठीक तरह कर लेते हैं, तो ये भी अच्छी प्रेरणा हमको है कि किसी एक सेवा को पकड़ लेना और उसी में ही प्रवीण होना। ये अच्छी बात है कि सब आधे आधे करें और कोई पूरी ना हो पाए। समय यहां समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछा है विदुर जी ने और उद्धव जी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध के विषय में आज प्रश्न पूछा गया है। अब अनिरुद्ध के बाद भगवान के अपने परिवार से हटकर अब भगवान के बहुत प्रिय भक्तों के संग में प्रश्न पूछेंगे। युधिष्ठिर महाराज भीम आदि के विषय में अभी प्रश्न पूछना शुरू करेंगे और उसमें ये लगता है कि इनको मालूम है युद्ध हो गया, सब समाप्त हो गए, अब वो कुशल मंगल है ना, तो ये इसके बाद पूछेंगे उनके विषय में समाचार। तो ये समाचार पूछने की शैली है, पुराने जमाने में जो गांव के लोग हैं उनको पता नहीं मालूम होगा कि कोई गांव में मेहमान आता था ना तो पैंच आते थे, 5-7 लोग इकट्ठे होके फिर कहते थे अब समाचार दीजिए। तो समाचार वो अपने गांव से निकला, कौन कौन मिले, वहां से लेकर यहां तक पहुंचा, ये 1 घंटा वो अपना समाचार देता था, फिर गांव वाले अपना समाचार देते थे। तो ये समाचार लेना देना ये परंपरा है, ये पुरानी परंपरा है भारत की। वो बच्चों के बारे में पूछते थे, फिर दूध पूत दो बातें जरूर पूछते थे, दूध है, गाय है, सब सुख है, खेत है, ये पूरा समाचार पुराने जमाने में पूछा करते थे। जब से ये फोन वाली बातें हो गई है तब से लोगों का समाचार घर बैठे मिलता है, इसलिए आत्मीयता खत्म हो गई लोगों में। तो पहले बहुत घंटों घंटों बैठ के एक दूसरे से समाचार, अभी भी हम कभी जाते हैं ना किसी इस्कान के मंदिरों से अलावा कहीं सत्संग में जाते हैं किसी समाज में, तो वो सारे पेंच आते हैं, पेंच थाली में प्रसाद लेके आएंगे, थाला ढक के प्रसाद उसके अंदर होगा, फल फूल जो भी होगा वो लाएंगे रखेंगे, फिर बोलेंगे अब इनसे समाचार लो दो, कहाँ कैसे आए, ये सब ठीक है, कुशल मंगल है, आश्रम ठीक, भक्त ठीक, ये सब ऐसे पूछना शुरू करेंगे और फिर उसको उसे उत्तर देना, ये फिर वो प्रसाद बांटा जाएगा। ये एक परंपराएं चलती हैं। तो विदुर जी उस परंपरा की बात कर रहे हैं कि कोई मिले तो उसको समाचार पूछना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? उद्धव जी तो धराधाम पर वैसे नहीं थे, वो रहते हैं गुलम लता के रूप में, उद्धव कुंड में रहते हैं। ये भागवत के महात्म्य के 4 अध्याय हैं, मेरे ख्याल में स्कंद पुराण से हैं, स्कंद पुराण से हैं मेरे ख्याल में, स्कंद पद्म पुराण के दूसरा है ये महात्म्य, दूसरा स्कंद पुराण का है। उसमें इसका 4 अध्यायों में वर्णन, उसमें बड़ा मजेदार वर्णन ये है कि भागवत सुनने वाले कैसे होते हैं, सुनने वाले 4 अच्छे सुनने वाले और 4 कच्चे सुनने वाले में 1 ऊंट सुनने वाले भी है। वो सुनने वालों की 4 श्रेणियां बताई है, बैल, ऊंट, ये कभी सुनेंगे तो बड़ा मजेदार है। ऊंट को क्या है, उसको आम दोगे तो नहीं खाएगा, कांटे खाएगा। तो कुछ ऐसे सुनने वाले हैं अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, सिर्फ असुरों वाला काम सुनेंगे कि यही हमारे काम का, कांटे ही खाएंगे। और बैल वो सुनने वाले हैं जिसको ये भी पता नहीं अच्छा क्या है खराब क्या है, उसको खली भी वैसी लगेगी और जो है वो कटा हुआ गन्ना दे देंगे तो वो भी वैसा ही लगेगा और अंगूर भी वैसा ही लगेगा। तो बैल सबको बराबर समझता, वो किसी की कथा में जाएगा हाँ बहुत अच्छा, अरे भगवान का पता है, पता नहीं जो बोलना ठीक है। तो ऐसे वो बड़ा सुंदर उसमें इन चीजों का वर्णन लिखा हुआ है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्री भागवतम की, नर्मदा स्वामी महाराज की, गौर प्रेमानंद, धन्यवाद।